الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة آل عمران کی 194 آیت ہیں اسے ہم آغاز کر رہے ہیں لیکن پیچھے آیت کے ساتھ 193 کے ساتھ تھوڑا جوڑ کے دعا کر رہے تھے مومنین صحابہ میں سے کہ اے ہمارے رب ہمیں ربنا فاغفر لنا ذنوبنا اے ہمارے رب ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کر دے وکفر عنا سیئاتنا اور ہماری برائیوں کو ہم سے جھاڑ دے وتوفنا مع الابرار اور ابرار کے ساتھ ہمیں اٹھا. کچھ بات ان پہ ہو گئی تھی, دوبارہ کچھ اہم چیزیں دہرا کے کفر عنا سیئاتنا کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو تکلیفیں آتی ہیں, جو بیماریاں آتی ہیں, جو اس طرح کی چیزیں ہیں, ان کو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دیں. لیکن یہ انہی کے ساتھ ہوگا جو یہ نظریہ رکھتے ہوں گے اور اپنی بیماریوں کو اسی پہلو سے دیکھتے ہوں گے. تو ہماری تکلیفیں, خواہ بخار ہو خواہ اللہ کی راہ میں کوئی تنگی آئے, اگر ہم ایمان پر ہیں اور صبر پر ہیں تو ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی. توفنا مع الابرار اور ہمیں ابرار کے ساتھ اٹھا. ابرار ایک جامع لفظ ہے, بنیادی معنی تو اس کے وفادار کے ہیں, لیکن ہر پہلو سے آپ سمجھیے کہ نیکیاں یہ ایک بڑا امبریلا سی ٹرم ہے, بہت بڑا لفظ ہے جس میں تمام نیکیاں آ جاتی ہیں. مثلا جہاں اطاعت کی ضرورت ہو اطاعت آ جائے گی, وفاداری کا معاملہ ہو تو وفاداری آ جائے گی, کسی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ہو تو حسن سلوک اس میں شامل ہو جائے گا. تو مثلا اگر میں کہوں کہ میں اپنے والدین کا بر ہوں یا نہیں, تو اس کا مطلب میں والدین کی خدمت کرنے والا ہوں, ان کے حسن سلوک کرنے والا ہوں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں بر ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں اس کی بندگی پہ قائم ہوں. تو یہ جامع لفظ ہے, بنیادی معنی ہے اپنے جو بھی آپ کا معاملہ ہے اس کو پورا کرنے والے, وفا کرنے والے. عہد ہے تو پورا کر دیں تو عہد کی وفاداری ہو جائے گی, حقوق ادا کر دیے تو آپ نے حق ادا کرنے والے بن گئے, تو حق کی وفا کر دینا, وعدے کو وفا کر دینا, یہ سارے ابرار میں. تو جہاں جہاں جو نیکی کا موقع ہو وہ نیکی کرنے والوں کو ابرار کہیں گے. آگے فرمایا ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. اے ہمارے رب, وہ جو آپ نے رسولوں کی زبان پہ ہم سے وعدہ کیا ہے وہ ہمیں دے دینا, اور قیامت والے دن ہمیں رسوا نہ کرنی, کیونکہ آپ وعدوں کو کی خلاف ورزی کرنے والے نہیں ہیں. یہ بہت ہی یعنی ایسے آدمی کی دعا ہے جو بہت ستایا ہوا ہو, بہت ستایا ہوا ہو کافروں کا خاص طور سے, وہ یہ دعا کر رہا کہ اللہ ہم نے آپ کے رسول کی بات پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں, ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان, کہ اے ہمارے رب ہم نے آپ کے ایک منادی کی آواز سنی جو ندا لگا رہا تھا ایمان کی, تو ہم نے مان لیا. اب اس کے مقابلے میں کہہ رہے ہیں کہ کافروں نے ہمیں رذائل بھی کہا, ہمیں دھکے بھی دیے, گھروں سے بھی نکالا, ہمارے بھائی بہن بھائیوں کو ستایا بھی, قتل بھی کیا, ظلم بھی کیے, تو اے ہمارے رب کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن بھی رسوا ہو جائے, یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ستائے ہوئے آدمی کی دعا ہے. وہ جتنا آپ پیچھے سورہ البقرہ اور آل عمران میں یا باقی صورتیں جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں اس میں جتنا جوکھم تھا وہ انہوں نے ایک جملے میں ڈال دیا, لا تخزنا یوم القیامہ. اے اللہ, دنیا میں ہم تیرے دین کی خاطر کافی ستائے گئے ہیں, تو قیامت والا دن بھی ایسا نہ ہو جائے. بہت خوبصورت, یعنی اگر کوئی دکھی دل کی صدا خدا کے حضور ہو سکتی ہے تو وہ ان الفاظ میں. تو اب ظاہر ہے کہ الفاظ اللہ کے ہیں, اور جن جن صحابہ کا یہ معاملہ ہوگا ان کے تو دل کھل اٹھے ہوں گے کہ ہمارے دل کی آواز پرو دیا اللہ تعالیٰ نے الفاظ میں. دیکھیے تفسیر تفسیر صرف یہ نہیں ہوتی کہ ہم اس کے معنی بتا دیں یا اس کے مفہوم بتا دیں، تفسیر یہ ہوتی ہے کہ اس میں کیا جذبات اور کیا احساسات بھی ہیں، وہ بھی ہم جہاں ضروری ہو اس کو بیان کرنا چاہیے۔ تو ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ، اے ہمارے رب، جو آپ نے اپنے رسولوں کی زبانی ہم سے وعدہ کیا ہے وہ پورا کر دیجیے گا، اور ہمیں قیامت کے دن رسوانہ کیجیے گا۔ انک لا تخلف المیعاد، بلا شبہ آپ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتے، یعنی وعدہ آپ کا سچا ہے تو پورا کر دیجیے گا۔ اب اس میں اپنی کوتاہیوں کا بھی مسئلہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہمارے اوپر ستم ڈھائے گئے اس میں ہم صابر نہ رہے ہوں، جہاں دین کے کوئی تقاضے ہونے تھے وہ پورے نہ ہوئے ہوں، اور ابرار ہونے کا جو دعا کی ہے کہ یا اللہ ہمیں ابرار کے ساتھ وفات دے، تو وہ کہیں ہم کسی موقع پر بر نہ رہے ہوں۔ تو یہ سارے احساسات اور پلس وہ جو ہزیمت اٹھایا، جو لوگوں نے ان کی توہین کی، ان کے ظلم و ستم کیے، وہ سارے شامل ہیں۔ بہت ہی جذبات سے لپٹی ہوئی دعا ہے بالکل۔ اب میں وہ بیان نہیں کر سکتا کیونکہ میں خود جذباتی آدمی نہیں ہوں، تو اس لیے وہ میں جذبات احساسات بیان نہیں کر سکتا، وگرنہ بس نشاندہی میں نے کر دی ہے، آپ لوگ اس کو خود جو جذبات میں باصلاحیت لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ، اے ہمارے رب، جو آپ نے رسولوں کی زبان سے ہم سے وعدہ کیا ہے وہ پورا کر دیجیے گا۔ اب ظاہر ہے کہ انہوں نے جنت کی خاطر ایسا کیا ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ کا جواب بہت زبردست ہے، اس کا پورا مقام ہی ایسا ہے کہ بندے اور خدا کے درمیان جو محبت، لگاؤ، وفاداری کا تعلق ہے وہ دونوں اپنے کمال پہ ہیں۔ انک لا تخلف المیعاد، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو وعدے کرتے ہیں وہ پورے کرتے ہیں۔ مولانا حمید الدین فراہی نے اس سے ایک اصول نکالا ہے کہ اللہ تعالیٰ وعدے تو پورے کریں گے لیکن وعید پوری کرنا لازم نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے تو وہ تو اللہ تعالیٰ پورے کریں گے، لیکن دوزخ میں ڈالنا، ہمیشہ کے لیے ڈالنا، یہ وعید ہے، لازم نہیں ہے کہ پوری ہو۔ لیکن بہرحال یہ ایک عالم دین کی رائے ہے، میں قرآن کے الفاظ آپ جانتے ہی ہیں۔ اب آگے اس دعا کا، دعا دوبارہ دیکھ لیجئے، میں ترجمہ صرف دوہرا رہا ہوں۔ دعا شروع ہوئی تھی کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ آیت 191 سے، اے ہمارے رب، آپ نے یہ کائنات بے معنی نہیں بنائی، بے مقصد نہیں بنائی، آپ بے مقصد کام کر ہی نہیں سکتے، آپ سبحانہ کا ہیں، تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، یہاں سے دعا شروع ہوئی تھی۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جس کو تو آگ میں داخل کر دے تو قد اخزیتہ، اب میں بھول گیا تفسیر میں بتانا کہ فقد اخزیتہ اور ولا تخزنا، ایک ہی لفظ انہوں نے بولا ہے، تو جس کو آپ نے آگ میں ڈال دیا تو گویا آپ نے اس کو رسوا کر دیا۔ اور وما للظالمین من انصار، اور ہمیں معلوم ہے کہ ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اے ہمارے رب، ہم نے آپ کے ایک منادی کو سنا جو آپ پر ایمان کی ندا لگا رہا تھا، آواز لگا رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے، تو اے ہمارے رب، اس ایمان کے بدلے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو جھاڑ دے، اور اب ہمیں تو ابرار کے ساتھ وفات دے۔ اے ہمارے رب، جو رسولوں کی زبانی آپ نے ہم سے وعدہ کیا ہے وہ پورا کیجیے گا، ہمیں رسوا نہ کیجیے گا قیامت کے دن، یعنی آگ میں ڈالنے والے فیصلہ نہ کیجیے گا ہمارے بارے میں۔ انک لا تخلف المیعاد، کیونکہ آپ وعدے پورے کرنے والے ہیں۔ اب اس شاندار دعا کا جواب دیکھیے، اتنا ہی شاندار ہے۔ فاستجاب لهم ربهم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا۔ دعا کا جواب دینے کا مطلب ہے دعا قبول فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور فرمایا کہ انی لا اوزی عمل عامل منکم من ذکر او انثی۔ یہ آیت جس طرح سے آئی ہے یہ بھی کمال ہے کہ دیکھو، میں تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، उसका अमल ज़ाया नहीं करूँगा, सबके अमल का अजर लाजमन मिलेगा, वादा अल्लाह ताला कर रहे हैं। तो फरमाया तुमने जो दुआ की है मैंने कबूल कर ली, मैं किसी का अमल ज़ाया नहीं करूँगा, तुम जो ईमान लेकर आए हो और जो कुछ तुमने सहा है सब मेरे सामने है, मैं किसी का अमल ज़ाया नहीं करूँगा। बादुकुम मिन बाद, ये आयत जो है, आयत का ये टुकड़ा, ये तमाम इल्म के ऊपर कुर्बान किया जा सकता है। फरमाया कि मैं किसी मर्द और किसी औरत का अमल ज़ाया नहीं करूँगा क्योंकि तुम सब बराबर हो। अरबी ज़ुबान का ये मुहावरा है, कुरान मजीद में कम अज़ कम 2-3 मकामात पे इसको लोगों ने, उर्दू दानों ने लुगवी मानी में लिया है। बाज़ुकुम मिन बाज़ का मतलब लुगवी होता है कि तुम एक दूसरे में से हो, बाज़ुकुम तुम में से बाज़, मिन में से बाज़ के, यानी तुम में से बाज़ में से हो, तुम में से कुछ में से हो, लुगवी मानी ये है, लेकिन मुहावरे में इसका मतलब होता है तुम बराबर हो। सूरह बनी इसराइल की आयत जब हम पहुँचेंगे इंशाल्लाह, वहाँ भी आयत को हल करने में अजमियों ने यही किया कि बाज़ुकुम मिन बाज़, वहाँ है अल्फाज ज़ुर्रियतन बाज़ुहुम मिन बाज़, तुम एक दूसरे की ज़ुर्रियत हो, ये तर्जमा कर दिया, जबकि वहाँ तर्जमा था तुम वो ज़ुर्रियत हो जो बिल्कुल बराबर हो, एक जैसे हो। तो बाज़ुकुम मिन बाज़ यानी मर्द और औरत खुदा की निगाह में बिल्कुल बराबर है। अगर कोई औरत अमल करेगी तो उसको भी पूरा अजर मिलेगा, अगर कोई मर्द अमल करेगा तो उसको पूरा अजर। तमाम जो जाहिलियत की रस्म और रवाज थे इस जुमले ने तोड़ दिए कि ऐसा नहीं कि औरतें अमल करने में आज़ाद नहीं हैं, उनके अमल का अजर नहीं मिलेगा, वो तो कोई और तरह की मखलूक है, ऐसा कुछ नहीं। बाज़ुकुम मिन बाज़, तो खुदा की निगाह में सब के सब बराबर हैं, किसी में कोई फ़र्क नहीं है। तो अब जवाब ये किया दिया कि जितनी औरतों ने इस्लाम कबूल किया है सहाबियात में से और क़यामत तक, हर नबी के साथ जोड़ दीजिए, हर उम्मत के साथ जोड़ दीजिए, कि जिन्होंने भी ईमान लाए और नेक अमल किए और मुशक्क़तें सही हैं उनका मैं पूरा पूरा अजर दूंगा, किसी अमल करने वाले का अमल ज़ाया नहीं करूंगा, ख़ा वो मर्द हो या औरत हो, क्योंकि तुम सब बराबर हो, मेरी निगाह में कोई फ़र्क नहीं है। तो मैं किसी और, ये नहीं होगा कि औरत को आधा, उसने नमाज पढ़ी, मर्द ने नमाज पढ़ी तो उसको 10 सवाब मिले और औरत ने नमाज पढ़ी तो 5, नहीं बराबर। बल्कि बाज़ सूरतों में औरतों को, बाज़ सूरतें क्या, हर एक के लिए मर्द हों या औरतें हों, कि बाज़ नमाज पढ़ना मसलन सर्दियों की फजर का सवाब ज़्यादा हो जाएगा गर्मियों के मुकाबले में, लेकिन टाइम की वजह से गर्मियों का सवाब भी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि 4 बजे उठना बड़ा मुश्किल काम है। तो हर पहलू से जो आपकी मुशक्क़त होगी उस पहलू से उसका अजर बढ़ जाएगा। जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, मस्जिद जितने कदम चल कर जाओगे उतना सवाब बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने सफ़र की एक मुशक्क़त उठाई है। तो इसी तरह से कोई भी किसी अमल में चीज़ इजाफे का बायस बन सकती है, मुशक्क़त उसकी, मुश्किल उसकी, या सर्दी, गर्मी, धूप। अब जोहर की नमाज के लिए मस्जिद जाना अगर 5-10 मिनट के फासले पर हो तो आसान काम नहीं, तो जो जाएगा धूप में जलता हुआ उसका अजर बढ़ जाएगा। तो ऐसा नमाजी जिसका शौहर, ऐसी औरत जिसका शौहर इजाज़त नहीं देता नमाज पढ़ने की, अजर बढ़ जाएगा। तो इस तरह से अजर बढ़ने और कम होने के फैक्टर्स अलग हैं, मर्द औरत होना अजर बढ़ने का बायस नहीं है या कम होने का। तो उसको अल्लाह ताला ने बता दिया है, और पूरे जितने भी अध्यान हैं सब में औरत के लिए ये रवैया नहीं है। जो बाकी अध्यान है अल्लाह ताला के अध्यान के अलावा, अल्लाह ताला के तीनों अध्यान में बराबर समझा गया है मर्द औरत को। तो फरमाया फल्लज़ीना, तो जो औरतें और मर्द जिन्होंने हिजरत की है, वह उखरजू मिन दियारहिम, और जो अपने घरों से निकाले गए हैं, वह उज़ू फ़ी सबीली, और जिनको मेरे रास्ते में सताया गया, सारे इकट्ठे कर दिए। वो जो जुमले में बात छुपी हुई थी, वला तुखज़िना यौमल क़ियामा, वो अल्लाह ताला ने खुद खोल दी कि जिन्होंने हिजरत की जिनको उनके घरों से निकाला गया, जिनको मेरे रास्ते में सताया गया। वह कातलू और जिन्होंने जिहाद किया, वह कुतिलू और जिहाद में शहीद हुए, ला अकफिरन्ना अनहुम सैयाते, तो हम उनके सारे गुनाह झाड़ दें, वादा कर दिया। मुशक्क़तें क्या क्या हैं? बहुत बड़ी बड़ी मुशक्क़तें हैं। हमें जो पाकिस्तान में या इस्लामी मुल्कों में लोग रहते हैं, उनको ऐसी मुश्किलें पेश नहीं आती। घरों से निकाले गए हैं, उनको अज़ियतें दी गई हैं, और उन्होंने हिजरत की है और जिहाद किया है और शहीद हुए हैं। फरमाया कि उनकी शहादत की वजह से, उनके जंग में जाने की वजह से, उनके सताए जाने की वजह से, उनको घरों से निकाले जाने की वजह से, उनके हिजरत करने की वजह से, मैं उनके गुनाह झाड़ दूँगा। इससे जो असूल निकलता है वो मैं कई दफ़ा पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ। यूँ समझिए कि हमारा जो नेकी और बदी का खाता है वो अकाउंट्स बुक की तरह चलता है, इनकम और खर्च जिस तरह हम लिखते हैं। तो जब हम नेकी करते हैं तो वो इनकम बन जाती है, जब गुनाह करते हैं तो वो खर्च हो जाता है। तो मसलन मैंने नमाज पढ़ी, 10 पॉइंट कमाए, मैंने झूठ बोला तो मैंने 5 फर्ज कर लीजिए गुनाह कमा लिए, तो टोटल बैलेंस 5 रह जाएगा। मैंने नमाज पढ़ी, 10 पॉइंट कमाए और मैंने झूठ बोला तो -5 पॉइंट कमा लिए, तो मेरा बैलेंस 5 रह जाएगा। फिर मैं दूसरा झूठ बोल दूँ, फिर -0.5 कमा लिए, तो मेरा बैलेंस 0 हो जाएगा। ये चलता रहता है। तो अब जब मैं जिहाद पे निकला तो मेरा बैलेंस एकदम बढ़ जाएगा, मैं शहीद हो गया, बैलेंस और बढ़ गया, करोड़ों पॉइंट्स आ गए मेरे पास, या मुझे अल्लाह के रास्ते में सताया गया और मैंने ईमान पर कायम रहा, पॉइंट्स बढ़ते चले जाएंगे। तो ये जितनी चीज़ें हैं जो अल्लाह की राह में आदमी सताया जाता है या हक की खातिर जो मुसीबतें सहता है, वो दुनिया में तो कोई अजर मिले ना मिले, आखिरत में उसके पॉइंट्स लिख दिए गए। तो उनका बयान कर दिया है कि मैं इनके गुनाहों को झाड़ दूंगा। तो अब जब हमें मुसीबतें आती हैं तो गोया गुनाह जड़ रहे होते हैं। इसी से नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैंने पिछली दफ़ा अर्ज़ किया था कि एक सहाबी को बुखार हो गया, तो वो बुखार को बुरा भला कहने लगे, तो आपने फरमाया कि नहीं नहीं बंदे मोमिन की शान ही अलग है, इसको मुशक्क़त आए तो वो भी उसके लिए सवाब का बायस बन जाती है, गुनाह जड़ जाते हैं उसके। लेकिन शर्त यह है कि वो साबित कदम रहे, ईमान पर रहे, वो कोई भाग ना जाए, फरार ना हो जाए या बेईमानी का शिकार ना हो जाए। आगे जो दुआ कबूल की है उसमें पहली बात यह है कि हाँ, जो उन्होंने दुआ की थी आपको अभी हमने पढ़ी है दोबारा, कि आयत नंबर 193 में वकफ़िर अन्ना सही आतीना, उसका जवाब पहले दे दिया कि हाँ, मैं इन चीज़ों की वजह से तुम्हारे गुनाह झाड़ दूंगा। ठीक है, दूसरा था कि हमें ला तुख़ज़िना यौमल क़ियामा, उसका आप जवाब दिया है, वला उदखिलन्नहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अनहार। हाँ, लाजमन लाजमन, इसमें बहुत ज़ोर है, लाजमन लाजमन मैं इनको जन्नत में दाखिल करूँगा, वो जन्नत जिसके नीचे नहरें जारी होंगी। तो अब ये दूसरी बात का जवाब दिया जो उन्होंने उन्होंने भी खुद इसको यानी मग़फ़रत को पहले ही बयान किया था, रब्बना अग़फ़िर लना ज़ुनूबना वकफ़िर अन्ना सय्यातिना, तो उसको अल्लाह ताला ने पहले कबूल कर लिया। फिर जो ये कहा था कि वला तुख़ज़िना यौमल क़ियामा, इसका जवाब दूसरी जगह पर दिया। तो फरमाया कि हाँ, मैं लाजमन इन सब को जिन्होंने ये दुआ की है जन्नत में दाखिल करूँगा। और इसमें ये ग्रुप भी बन गए हैं, हिजरत करने वाले जिनको घरों से निकाला गया, उनको जिनको अल्लाह की राह में सताया गया, जिन्होंने जिहाद किया, जो शहीद हुए, सब ग्रुप बना, इन सब के साथ यही मामला होगा। सवाबन मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से जजा है, ये अल्लाह की। सवाब का मतलब जजा होता है, हमारे उर्दू में थोड़ा मफहूम पॉइंट्स के मानी में चला जाता है, वो भी ठीक है, लेकिन सवाबन मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से जजा है। ये जो हम जुमला बोलते हैं, ये इसके अंदर कुछ छुपे हुए मानी होते हैं। जब अल्लाह की तरफ से जजा आनी है तो इसका क्या मतलब है? यानी उसकी अजमत बहुत ज़्यादा होगी, वो पक्की बात है, लाजमन मिलेगी। तो चूंकि अल्लाह ताला छोटी ज़ात नहीं है, तो अल्लाह की तरफ से अगर सज़ा मिल रही है तो बहुत बड़ी होगी, अल्लाह ताला झूठे नहीं है नौज़ बिल्ला, तो जो उनकी तरफ से मिल रहा है पक्का वादा है। ये सारे मानी इसके अंदर हैं, सवाबन मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से मिलने वाली सज़ा है, इसमें कोई कोताही नहीं होगी, कोई कमी नहीं होगी, कोई छोटे से छोटा अमल इसमें ज़ाया नहीं होगा, कुछ भी नहीं। ठीक है, हर चीज़ की सज़ा मिल जाएगी, किसको उंगली पर भी चोट लगी है, नाखून भी टूटा था जंग में, उसका भी सज़ा मिलेगी। ये है सवाबन मिन इंदिल्लाह। तो अब जो पूरी बात चली कि मैं तुम्हारा कोई अमल ज़ाया नहीं करूँगा, तो मैं पूरा पूरा अजर दूँगा और फिर तुम्हें कफ़ारा बना दूँगा तुम्हारी चीज़ों को, और फिर फरमाया कि जन्नत में दाखिल करूँगा, और ये खुदा की तरफ से वादा है सवाब का। इसको हकीर ना समझना, इसको गलत ना समझना, और ये ख्याल ना करना कि कोई छोटी से छोटी चीज़ भी रह जाएगी, नहीं, एक एक चीज़ का, एक एक पाई का हिसाब चुका दिया जाएगा। वल्लाहु इंदहु हुस्नुस सवाब, और जहाँ तक अल्लाह का मामला है तो उसके पास तो बेहतरीन सवाब है, बेहतरीन जजा है। एक पहलू को दोहरा दिया है क्योंकि ये तसल्ली का मज़मून है, तो तसल्ली के मज़मून में ये बात दोहरानी, पहले में सारी चीज़ें शामिल हैं, यानी कोई चीज़ ज़ाया नहीं होगी, छोटी से छोटी चीज़ का बदला भी मिलेगा, बड़ी से बड़ी चीज़ का ही बदला मिलेगा, झूठ नहीं है, गलत नहीं है, दुरुस्त बात है ये, क्योंकि खुदा की तरफ से है। आगे सिर्फ उसका वो पहलू जो हौसला बढ़ाने के लिए चाहिए था वो बयान कर दिया कि अल्लाह के पास बेहतरीन सवाब है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मैंने तो टूटी फूटी नमाज पढ़ी थी, अल्लाह ने ढेर दे दिया सवाब, ये मतलब है इसका। इसको अल्लाह ने बयान किया है अपने कायदे को कि जो बालियों वाली मिसाल दी है कि एक बीज जिस तरह तुम बोते हो, फिर उस पर सात बालियां लगती हैं और सात बालियों में 100-100 दाने होते हैं, इतना बढ़ जाएगा एक अमल। तो आप देखिए 700 गुना तक, मैंने नमाज पढ़ी थी एक, और मैंने अगर तकवे के साथ दिल लगा कर पढ़ी या तो वो 700 नमाजों का सवाब पैदा कर देगी। इसको बयान किया है वल्लाहु इंदहु हुस्नुस सवाब, तो अल्लाह के पास तो बेहतरीन बदला होगा, बेहतरीन जजा होगी। तो ये अब मोमिनीन के लिए अल्लाह ताला की तरफ से वादा है, दुआ मोमिनीन की जो थी उसको कबूल कर लिया है, और कोई अमल ज़ाया ना करने का वादा कर लिया है, और ये वादा कर लिया है कि जितनी मशक्क़त तुम सहोगे वो तुम्हारे लिए कफ़ारा बन जाएगी, और ये वादा कर लिया है कि मैं जन्नत में ले जाऊँगा और वहाँ बेहतरीन अजर दूँगा। इससे बड़ी कबूलियत क्या हो सकती है? तो मेरा ख्याल है कि सहाबा को रातों को नींद नहीं आई होगी, इतनी बड़ी ये बशारत है। इसके बाद भी लोग कहते हैं कि सहाबा जन्नत में नहीं जाएंगे, वो अल्लाह ताला माफ़ करे उन लोगों को। तो ये उहद के शहदा के बारे में बात हो रही है, उहद में लड़ने वालों की बात हो रही है। तो जितने सहाबा उहद में गए हैं सारे के सारे इंशाल्लाह इस अजर के मुस्तहिक हैं। लोग बड़ा अहमियत देते हैं अशरा मुबशरा की रवायत को, वो तो बहुत थोड़ी तादाद है। बदरी सारे जन्नती हैं, उहद के लोग सारे जन्नती हैं, तो बड़ी तादाद है। जो सूरह वाकिया में अल्लाह ने बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में साबिकून की तादाद बहुत ज़्यादा है, साबिकून की यानी जो अव्वल दर्जे के जन्नती हैं। तो अगर सारे सहाबा हज़रत अली के सिवा गासिब थे तो तादाद तो बड़ी थोड़ी रह जाएगी। लेकिन बहरहाल ये फ़िरका वराना चीज़ें हैं, हमें इसमें नहीं पढ़ना है। ला युगर्रन्नक तकल्लबुल्लज़ीना कफ़रू फ़िल बिलाद मताउन कलील। देखो, आपको काफ़रों का इस मुल्क में चलत फिरत, आना जाना, सरगर्मियाँ, खाना पीना, ये धोखे में न डाले, ये भी तसल्ली का जुमला है। क्योंकि इधर सहाबा इस हालत में हैं, उहद का एक चोट लगी हुई है, 70 सहाबा शहीद हो चुके हैं, और मुनाफिकों ने मदीना में आकर एक सनसनी फैलाई हुई है, जो हम पीछे पड़ चुके हैं, उनके अल्लाह ताला ने तसल्ली बख्श जवाब दिए हैं। उधर काफिर मगन है, वो फतह के जश्न मना रहे हैं कि हम कमाल कर दिया हमने। तो फरमाया कि अब कुछ जहनों में सवाल पैदा होगा कि काफिर हैं तो अल्लाह ताला उनको ये मौका क्यों दिया हुआ है, क्यों खुश हो रहे हैं वो, और क्यों कामयाबी के डंके बजा रहे हैं। तो फरमाया कि इस मुल्क में काफिरों की जो जद्दोजहद है, जो चलत फिरत है, जो आना जाना है, जो आज़ादियां हैं, वो आपको धोखे में ना डालें। मताउन कलील, ये थोड़ी सी अल्लाह ताला ने उनको नेमते शेमते देनी है, बस कुछ नहीं है। सुम्मा मावाहुम जहन्नम, फिर उनका ठिकाना दोजख है, वह बेसल मिहाद, और ये नहायत बुरा ठिकाना है। मता जो होती है वो ज़िंदगी गुजारने की चीज़ें होती हैं, सामान्य ज़िंदगी कह लीजिए। ये अल्लाह ताला का कायदा है, अल्लाह ताला बहुत इंसाफ पसंद है। किसी काफिर को भी उसकी नेकियों का बदला भी दिए बगैर नहीं छोड़ेंगे, किसी काफिर को भी उसकी नेकियों का बदला दिए बगैर नहीं छोड़ेंगे। चुनांचे काफिरों को दुनिया ही में उनका अजर दे दिया जाता है। उसके लिए ज़रूरी है कि जिन जिन को अजर देना है वो कुछ खा पी लें, कोई अपने कारनामे सुना लें, अपने हीरोइज्म के नारे लगा लें, तो उनको करना है, करने दें। तो उसकी तरफ इशारा है कि मैंने, ये जो काफिर हैं इनको ऐसे ही नहीं छूट दी हुई मैंने, उनको कुछ ना कुछ मिलना है इस दुनिया में। उन्होंने जो नेकियां की हैं, बस अबू जाहल भी अपनी माँ की खिदमत तो करता ही होगा, तो क्या उसको अजर ना दू देना, तो अजर दिया जाएगा उसको। तो काफिर को भी अजर, लेकिन दुनिया मिल जाएगा, बस इतना है। और वो बाद में भी चलता रहता है, किसी की शोहरत हो जाएगी, किसी की नेक नामी हो जाएगी, किसी का कुछ हो जाएगा, लेकिन क्यामत वाले दिन वो पकड़े जाएंगे। इसको अल्लाह ताला ने बयान किया। हाँ, ये भी बयान किया अल्लाह ताला ने कि बाज़ का हफ्ते अमाल दुनिया में भी हो जाता है, यानी एक ऐसा काफिर हो गया है कि अब अल्लाह ने, अल्लाह के कानून के मुताबिक दुनिया में भी उसको अजर नहीं मिलना। मुझे अबू जहल ऐसे लगता है, उसका दुनिया में भी हफ्ते अमाल हुआ, उसने ओहद की कामयाबी भी नहीं देखी, उठा लिया अल्लाह ताला। लेकिन जिन्होंने ओहद की कामयाबी देखी है, यानी ओहद में कामयाबी नहीं कहना चाहिए, मैं पहले बता चुका हूँ कि अल्लाह के मुताबिक वो फतह नहीं है, सिर्फ नुकसान हुआ मुसलमानों का। तो अब ये अल्लाह का कायदा है, इसको समझना चाहिए। अल्लाह का कायदा ये है कि दुनिया में लोग दो तरह के हैं, एक आखिरत के लिए जीते हैं, एक दुनिया के लिए जीते हैं। जो दुनिया के लिए जीते हैं उनको दुनिया ही में जो अल्लाह चाहेंगे, जैसा चाहेंगे, अजर दे देंगे, लेकिन उनका आखिरत में हिस्सा नहीं है। दूसरे वो लोग हैं जो आखिरत के लिए जीते हैं, उनको अल्लाह ताला अपनी लिखी हुई तकदीर के मुताबिक रिस्क दे देंगे, लेकिन उनका असल अजर क्यामत वाला दिन मिलना है, वो वहाँ जाकर पाएंगे। तो अब जो दुनिया में जिनको मिलना है, वो अल्लाह ताला, उनमें काफिर भी शामिल होते हैं कि जो कुफर कर देते हैं। काफिर वो होता है जिस पर हक बिल्कुल वाजे हो जाए और हक वाजे होने के बाद वो इसका इनकार करें। हर गैर मुस्लिम काफिर नहीं होता और हर गैर मुस्लिम दोस्ती नहीं है, ये वाज़े रहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जानते बूझते हक समझने के बाद इनकार नहीं किया होगा। तो यहाँ कुरान मजीद में जिन काफिरों की बात हो रही होती है, उनमें 23 साल कुरान ने लगाए हुए हैं, उसके बाद वो काफिर हुए हैं, उनकी बात हो रही है। तो फरमाया कि बस दुनिया के थोड़ी देर के लिए उनको नेमतें मिल रही हैं, फिर वो दोजख में चले जाएंगे और ये नहायत बुरा ठिकाना है। लकिन अल्लज़ीन तकौ रब्बहुम लहुम जन्नात उन तजरी मिन तहतिल अनहार खालिदीन फीहा नुज़ुलन मिन इंदिल्लाहि वमा इंदिल्लाहि खैरुन लिल अबरार। अबरार का लफ्ज़ दोबारा आया है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, लफ्ज़ों की तकरार बिला वजह नहीं होती, पीछे बात जोड़ी जाती है। तो जैसे खिजी का लफ्ज़ वला तुख़ज़िना और फ़क़द अख़ज़ैतहु, ये बमानी है, दोजख में डालना मतलब हो गया इसका, पिछली आयत की वजह से। तो फरमाया कि लेकिन, यानी जिनका जो काफिर हैं दुनिया में चलत फिरत कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, उनका मामला ये है कि थोड़ी सी दुनिया की ज़िंदगी है, उसके बाद फिर दोजख है। लेकिन वो लोग जो अपने रब से डरते रहे उनके लिए दायमी जन्नतें हैं, जिनके नीचे नहरी जानी होगी, उसमें वो हमेशा रहेंगे। और ये जन्नतें जो हैं ये पहले पहला मेहमान नवाजी है, स्टार्टर है। नुज़ुलन का मतलब होता है जो मेहमान को आते ही कुछ चीज़ें दी जाती हैं उसको नुज़ुल कहते हैं। मिन इंदिल्लाह, इतनी बड़ी आते ही ज़ियाफ़त ये अल्लाह की तरफ से है। वही वानी जो पहले मैंने बयान किए थे कि मिन इंदिल्लाह का मतलब है कि भाई खुदा के शाना शान चीज़ें होंगी। तो ये जो जन्नतें हैं ये आपकी पहली मेज़बानी होगी। वमा इंदल्लाह ही खैर खैरुन लिल अबरार, और जो अल्लाह के पास है वो उसके नेक बंदों के लिए बेहतरीन है, इससे भी बढ़कर है। तो ये जाते ही आपको जो कुछ मिलेगा इसमें फिर इसका मतलब है कि बहुत इजाफा होता रहेगा। ज़ाहिर है कि अगर मेहमान नवाजी नुज़ुलन पर ख़त्म हो जाए तो ये तो अच्छी मेहमान नवाजी नहीं है, तो इसमें बढ़ता रहेगा। उसी को आगे बयान किया है, वमा इंदल्लाह ही खैर, जो इस जो अल्लाह के पास है वो इससे भी बढ़कर है। लिल अबरार, उन लोगों के लिए जो वफादार है। मैंने ये अर्ज़ किया कि अबरार का मतलब उस आदमी का है कि जो नेकी का मौका हो वो कर डाले, मसलन वादा कर लिया तो पूरा करे, किसी का हक अदा आयद हो गया तो हक पूरा कर दे, वादा कर लिया पूरा करे, वालदैन की खिदमत करनी है तो वालदैन की खिदमत कर रहा हो, खुदा का कोई हक आ गया तो उसको पूरा कर रहा हो। तो अबरार उस साद उन लोगों को कहेंगे कि जो हर हर जगह पे जो जो हक जो जो ड्यूटी आ रही थी पूरी कर दी उन्होंने। तो वमा इंदल्लाह ही खैर उन लिल अबरार, तो अल्लाह के पास अबरार के लिए जो कुछ है वो बेहतरीन है। तो नुज़ल भी बेहतरीन और उसके बाद जो कुछ मिलेगा वो भी। तो अब जो वादा अल्लाह ताला ने किया था ऊपर दुआ कबूल करते हुए, उसमें तसल्ली का पहलू शामिल करते हुए काफ़रों की चलत फिरत उनकी कामयाबियों को बता दिया कि नहीं, ये उनके जो दुनिया में उनको मिलना है वो मैं देकर रहूँगा, वो उनको मिलना ही मिलना है, आप उसकी से घबराएं नहीं, परेशान ना हो। अलबत्ता जो तकवे वाले हैं उनको मैं दहन जहन्नुम में नहीं डालूँगा, बल्कि उनके लिए बेहतरीन रियाफत होगी। और उसके दो हिस्से कर दिए, एक जाते ही जो कुछ मिलेगा यानी जन्नत का दरवाज़ा खुलते ही जो आपको मिला है वो दायमी बागात है, जिनके नीचे नहरें होंगी और वो उसमें से निकाले नहीं जाएंगे। आगे फरमाए, व इन्ना मिन अहलिल किताबी लमन युमिनु बिल्लाही वमा उन्जिला इलैकुम वमा उन्जिला इलैहिम खाशईना लिल्लाह। अब साहबा जो कुरैश में से थे, जो मुशरकीन में से थे, उनके लिए तो बशारत हो गई, अहले किताब मुसलसल तेरे बैस हैं तो उनका भी हक बनता था। चनाचे फरमाया कि बिला शुबा अहले किताब में से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो लाजमन ईमान ले आएंगे या लाजमन ईमान वाले हैं उस अल्लाह पर भी और जो मैंने नाजल किया है तुम्हारी तरफ। साहबा की तरफ इशारा किया कि जो मैंने तुम्हारी तरफ नाजल किया है उसको भी वो मान रहे हैं और जो उनके ऊपर नाजिल हुआ था उसको ही मान रहे हैं। और ये जो ईमान है उनका वो खाशेना लिल्ला, अल्लाह से डरने की वजह से है। ये बहुत अहम बात है। ईमान कई किस्म का होता है। एक ईमान वो होता है जो भेड़ चाल होती है, मुआशरा जो कर रहा है करते रहो, लेकिन उसमें अल्लाह की खशियत नहीं होती। एक ईमान वो होता है जो दुनियावी फ़ायदों के लिए होता है, चलो ईमान लाने वालों को ज़कात सिर्फ देनी पड़ती है, टैक्स नहीं देना पड़ता, चलो ईमान ले आते हैं। एक वो ईमान होता है जो दुनिया में नामवरी के लिए होता। हमारे सियासतदान अक्सर अपने वो, अब तो खैर कम छपते हैं इस तरह के, हमारे बचपन में हर एक में अलहाज फलाना फलाना, मैं हाजी हूँ, मैंने बहुत सारे हज किए हुए हैं तो मुझे वोट दो। ये क्या चीज़ है? यानी आप अपने इलेक्शन की कंपेन में अपना पोस्टर जो छपवा रहे हैं उसके ऊपर लिखा अलहाज, ये खुदा और आपका मामला है, उसको रहने दें। मोटा मोटा अलहाज लिखा होता था, शायद अब भी लिखा हो बाज़ इलाकों में। तो ये अपने हज को बेचना है, ये दुरुस्त बात नहीं है। दुनिया का फ़ायदा वोट लेने के लिए आपने, तो खाशिन लिल्लाह का मतलब है कि ख़ास अल्लाह की खातिर वो ईमान लाए हुए हैं। वो नबी करीम सल्लम की कामयाबियों की वजह से ईमान नहीं ला रहे, मुनाफिकीन को इशारा कर रहे हैं अल्लाह ताला कि मुनाफिकीन इसलिए ईमान लाए कि कुछ फ़ायदा हो जाएगा, नबी सल्लम कामयाब हो गए तो इधर कोई पोजीशन मिल जाएगी, यहूद कामयाब हो गए तो उधर कुछ पोजीशन मिल जाएगी। तो उसको काटने के लिए फरमाया खाशिन लिल्लाह। तो अहले किताब में से भी जो लोग ईमान वाले हैं, अल्लाह को मान रहे हैं, जो कुछ मैंने कुरान में नाजिल किया है उसको भी मान रहे हैं, और जो मैंने तौरात और इंजील में नाजिल किया था उसको भी मान रहे हैं अल्लाह की खातिर, ला यश्तरूना बिआयातिल्लाहि समनन कलीला, और वो अल्लाह की आयतों को हकीर कीमत के बस बेच नहीं रहे हैं, उलाइका लहुम अजरहुम मिन रब्बिहिम, इनका अजर भी उनके रब के पास, इन अल्लाह सरीउल हिसाब, और अल्लाह ताला हिसाब करने में बहुत तेज़ है। तो गोया उन अहले किताब को भी बशारत दे दी जो ओहद के इस पूरे पस मंज़र में से अपने लिए ईमान के रास्ते निकाल पाए थे। ये अल्लाह ताला ने बताया है सूरह, इसी सूरह में ओहद के वाक़यात पे तबसरा करते हुए कि मैं क्या करता हूँ, एक टुकड़ी निकाल लेता हूँ मोमिनीन की, मैं क्या करता हूँ खबीस और तैयब को अलग करता हूँ, मैं खबीस और तैयब को अलग करता हूँ, मोमिन और काफिर को अलग करता हूँ, मोमिन और मुजरिम को अलग करता हूँ। तो ऐसा ही ओहद ने भी काम किया कि ओहद के होने के बाद बहुत सारे अहले किताब की आंखें खुली कि ओहो हमारा मामला वाकई अल्लाह के साथ पड़ गया हुआ है। क्योंकि जो ओहद के वाक़यात में मैं पहले भी दो तीन दफ़ा तवज्जो दिला चुका हूँ अपने इन दरूस में कि ओहद के बारे में जो कुछ अल्लाह ने बयान किया है वो बहुत खुदा के दुनिया को चलाने की नहायत हकीमाना बातें हैं जो बयान की गई वहाँ। हमारे लिए दुनिया को समझने का के लिए एक इल्म का ख़जाना है जो अल्लाह ने रख दिया है, इसलिए उसको पूरी तवज्जो से उस पूरे मकाम को, पूरी सूरह आले इमरान जो है उसका मेरा ख्याल है 1/3 हिस्सा इस पर लगाया अल्लाह ताला ने। तो पूरी दानाई उसके अंदर के खुदा दुनिया को कैसे चलाता है, वाक़यात क्यों होते हैं, हादसात क्यों होते हैं, उसमें हमारे दौरे जदीद का प्रॉब्लम ऑफ ईवल का जवाब भी मौजूद है, उसमें पता नहीं क्या क्या कुछ है। तो ये मकाम बार बार पढ़ने का है, अगर याद कर सकते हो तो याद कर लीजिए, क्योंकि जो जहन में बातें याद होती हैं वो फिर मुश्किल मौक़ों पर काम आती हैं। तो यहाँ पर कुछ अहले किताब सामने आ गए हैं जिन्होंने ओहद के अमल से गुज़र कर ईमान कबूल कर लिया है, तो उनको अल्लाह ताला बिशारत दे रहे हैं कि इनका अजर भी उनके रब के पास महफूज है, कोई छीन नहीं सकता। और उनके दिलों में एक सवाल होगा कि अच्छा जो हमने अभी तक ओहद के टाइम तक नबी सल्लम की मुखालफत की है उसका क्या बनेगा, सवाल है ना, या हम जो खराबियां करते रहे हैं उनका क्या बनेगा। मैं घबराओ नहीं, मैं हिसाब में बहुत तेज हूं, तुम्हारा अजर नहीं जाया होगा, मिल जाएगा। आगे सूरा खत्म हो रही है और मोमिनीन को अल्लाह ताला नसीहत कर रहे हैं। अब ये दोनों शामिल हैं इसके अंदर, जो अहले किताब में से आ गए हैं और जो अरबों के अंदर से थे। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु, या ईमान वालो, इसबिरु, ईमान पर साबित कदम रहो। मैं पहले बता चुका हूँ कि सब्र के मानी ये हैं कि हर हालत में आपने, खा अच्छे हालात हों या बुरे हालात हों, आपने ईमान को नहीं छोड़ना, अच्छे रवैये को नहीं छोड़ना, सही मौक़िफ़ को नहीं छोड़ना, सही तर्ज अमल को नहीं छोड़ना, नेकी के अमल को नहीं छोड़ना, हालात जो भी हों। और ये भी सब्र है कि जब गलती वाजे हो जाए तो सही बात पे आ जाए, क्योंकि हमने सही चीज़ नहीं छोड़नी, सही रवैया नहीं छोड़ना, सही तर्ज अमल नहीं छोड़ना। तो जब पता चले कि मेरा ये तर्ज अमल गलत है तो सही तर्ज अमल पे आ जाए, जब पता चले कि मेरी राय गलत थी सही राय पे आ जाए, जब पता चले कि ओहो मेरा ये मामला ठीक मैंने नहीं किया फौरन गलती का اعتراف करें और जगह पे आ जाएं। तो ये सब्र है, इसलिए अल्लाह ताला ने यहूद को कहा था सूरह अल बकरा में कि वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलात, सब्र से मदद लो। क्या मतलब? कि जब पता चल गया है कि हमारी बात गलत है तो ठीक जगह पे आ जाओ, हक पर कायम रहने से मदद लो। हर बंदे मोमिन की शान यही है कि वो हर वक्त सच्चाइयों पर कायम है, अच्छाइयों पर कायम है। उससे गलती हो जाए तो फौरन तौबा करता है और सही जगह पे आ जाता है। तो ये सब्र के माने हैं। वसाबिरू, और दुश्मनों के मुकाबले में साबित कदमी में जीतो। ये ना हो कि मैदान जंग में एक काफिर तुम पर गलबा पा जाए, सब्र कर रहे हैं, वो ज़्यादा साबित कदम सामने निकल आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हें उनसे जीतना है सब्र में, साबित कदमी में। वराबे तू, और जंगी तौर पर तैयार रहा करो। वो मामला ना हो जो बहुत में हो गया है कि वो फिर तैयारियां करने लग गए और कुछ लोग घबरा गए, नहीं, तैयार रहा करो हर वक्त, खा अमन के दिन हो खा जंग के दिन हो। वराबे तू, राबे तू का मतलब अपने घोड़े बांध के रखो, हर वक्त तैयार रहो। वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, और ये सब कुछ करते हुए खुदा खौफी से करना ताकि कल क़यामत वाले दिन तुम कामयाब हो जाओ। तो ये एक खूबसूरत सूरह का इख्तिताम है, सूरह आले इमरान का। तो कुरान की दो बड़ी सूरतें आप लोगों ने पढ़ ली। मैं इस काबिल नहीं हूँ कि ये काम कर सकता, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला की शान है, उसने तौफीक बख्शी। खुदा से दुआ है कि कोई गलती हुई हो तो वो माफ़ करे, जो अच्छी खिदमत हो गई उसको कबूल करे। तो वक्त भी हुआ जाता है। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।